नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम षष्ठम स्कंध अध्याय 13 श्लोक संख्या 3। सिराज उवाच इंद्रस्य अनिवृत्ते हेतुं श्रोतुं इच्छामि भो मुने एना आसना सुखिनः देवाः हरेः दुःखं कुतः अभवत्। इंद्रस्यानिवृत्ते हेतुं श्रोतुमिच्छामि भो मुने एनासं सुखिने देवा हरे दुःखं कृतो भवत्। इंद्रस्यानिवृत्ते हेतुं श्रोतुमिच्छामि भो मुने एनासं सुखिनो देवा हरे दुःखं कृतो भवत्। इंद्रस्यानिवृत्ते हेतुं श्रोतुमिच्छामि भो मुने एनासं सुखिनो देवा हरे दुःखं कृतो भवत्। माताजी राजवाच। राजा परीक्षित ने पूछा इंद्रस्य इंद्र का अनवृत्ते दुख का हेतुम कारण श्रोतुम सुनना इच्छामि चाहता हूँ भो हे भगवान मुने हे मुनि सुखदेव गोस्वामी एना जिससे आसना थे सुखिनः अत्यंत प्रसन्न देवाः समस्त देवता हरेः इंद्र का दुखं दुख अप्रसन्नता कृतः कहाँ से अभवत था। अनुवाद उत्तर पर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद महाराज की जय। तो महाराजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि हे मुनि इंद्र की अप्रसन्नता का क्या कारण था मैं इसके विषय में सुनना चाहता हूँ। जब उसने वित्रासुर का वध कर दिया तो सभी देवता प्रसन्न हुए तो फिर इंद्र स्वयं क्यों अप्रसन्न थे। पीछे दोहराई। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि हे मुनि, इंद्र की अप्रसन्नता का क्या कारण था, मैं इसके विषय में सुनना चाहता हूं। जब उसने वृत्तासुर का वध कर दिया तो सभी देवता प्रसन्न हुए, तो फिर इंद्र स्वयं क्यों अप्रसन्न थे। तात्पर्य, वास्तव में यह अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न है। जब कोई असुर मारा जाता है तो निश्चित रूप से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। यहां पर वृत्तासुर के मारे जाने पर सभी देवता प्रसन्न थे, परंतु इंद्र अप्रसन्न था, क्योंकि उसे पता था कि उसने एक परम भक्त तथा ब्राह्मण का वध किया है। वृत्तासुर बाहर से असुर प्रतीत होता था, किंतु भीतर से वह परम भक्त होने के कारण ब्राह्मण था। यहां पर यह स्पष्ट सूचित किया गया है कि जो व्यक्ति तनिक भी आसुर वृत्ति का नहीं होता, जैसे प्रहलाद महाराज या बलि महाराज, वह बाह्यतः असुर हो सकता है या असुरों के वंश में जन्म हो सकता है। अतः वास्तविक संस्कार कहता है कि मात्र जन्म के अनुसार किसी को असुर या देवता नहीं माना जाना चाहिए। इंद्र से युद्ध करते समय वृत्तासुर ने अपने को भगवान का परम भक्त सिद्ध कर दिया था। यही नहीं, इंद्र से युद्ध बंद करने के तुरंत बाद वृत्तासुर वैकुंठवासी हो गया। इंद्र को यह बात यह ज्ञात था, अतः ऐसे असुर को जो वास्तव में एक वैष्णव या ब्राह्मण था, मारने से अत्यंत दुखी था। वैष्णव पहले से ब्राह्मण होता है, भले ही ब्राह्मण वैष्णव न होता हो। पद्म पुराण का कथन है कि षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुण स्याद वैष्णव स्वपचो ग्रह। भले ही कोई अपने संस्कार तथा परिवार से ब्राह्मण हो और वैदिक ज्ञान में दक्ष, किंतु यदि वैष्णव नहीं है तो गुरु नहीं हो सकता। इसका उपाय यह है कि दक्ष ब्राह्मण वैष्णव नहीं भी हो सकता, किंतु एक वैष्णव पहले से ब्राह्मण होता है। एक लखपति के पास सैकड़ों हजार रुपए हैं, किंतु जिसके पास सैकड़ों हजार रुपए हो तो आवश्यक नहीं है कि वह लखपति ही हो। वृत्तासुर परम वैष्णव था, अतः वह ब्राह्मण भी था। ओम अज्ञान तिमिरांधस ज्ञानांजन शलाकया चुमृतम इन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा तो इस अध्याय का नाम है ब्रह्म हत्या से पीड़ित राजा इंद्र। हम सभी जानते हैं कि भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं गो ब्राह्मण हिताय च, गौओं की सुरक्षा के लिए और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। अब वृत्तासुर ब्राह्मण था, जब वो मारा गया कैसे मारा गया ये थोड़ा सा सुनिए, क्योंकि इसके बाद ये शुरू हो जाता है कि जब भयानक युद्ध हुआ वृत्तासुर से और सारे देवता मिलकर के लड़ रहे थे, है ना। वृत्तासुर के पास भी काफी संख्या में असुर थे और इंद्र की अगुवाई में युद्ध लड़ा जा रहा था। तो एक तरफ से इंद्र के साथ सारे देवता, एक तरफ से वृत्तासुर और सारे, बहुत भयानक युद्ध हुआ। और देवताओं ने जिस तरह से भयानक युद्ध किया तो वृत्तासुर के जो सैनिक थे वो भागने लगे। और आप सब जानते हैं कि जब कोई भागता है, रण छोड़ता है, तो पीछे सिवार नहीं करना चाहिए, लेकिन देवताओं ने बख्शा नहीं, फिर माना। तो वहीं पे वृत्तासुर उपदेश देता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और वृत्तासुर और इंद्र के बीच में बहुत सुंदर भगवान के बारे में चर्चा हुई। युद्ध में भगवान चर्चा तभी संभव है जब युद्ध करने वाला भी भगवान का भक्त हो। तो वृत्तावर्ष जो भगवान का भक्त था वो इस तरह से बहुत ही भगवान के बारे में बड़ा ज्ञान हुआ। अब बाद में जब उसको काफी असर मार दिया, फिर वो चाहता था कि इंद्र मुझे मारे, क्योंकि वो जानता था कि संसार में कुछ रखा नहीं, हमें कहां जाना है, वैकुंठ लोक भगवान के पास जाना है, देरी क्यों हो रही है। इससे इंद्र से स्वतः कहा कि आप जितना जल्दी करें उतना हमारा उद्धार करें। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि देखिए वृत्तासुर बहुत भयानक, बहुत ही बलवान और बहुत विशाल का राक्षस था, और इंद्र जिस हाथी पर बैठ करके युद्ध कर रहे थे उस हाथी का नाम क्या है, ऐरावत हाथी। तो अब समझे कितना उसका विशाल मुख था, पेट था, कि उसने हाथी सहित इंद्र को निगल गया। ऐसा दृश्य है। बहुत ही सुंदर व्याख्या श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। हम तो संक्षेप में बताएंगे क्योंकि आज नरोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव तिथि है, हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जैसे ही वो निगल गया है ना, तो वृत्तासुर ने सोचा कि मैंने इंद्र का वध कर लिया। भाई जब समूचा निगल गया तो उसने ये सोच लिया कि अब हमने इंद्र का क्या कर दिया, वध कर दिया। तो निश्चिंत हो गया, निश्चिंत होकर के उनको पेट में निगल करके बड़े आराम से किस पर ध्यान लगाया, भगवान संकर्षण पर। भगवान संकर्षण पर उसने ध्यान लगाया। तो बताया कि जिस तरह से नारियल सूखा होता है, जब नारियल एकदम पक जाता है तो क्या करता है, वो छोड़ करके और जो नारियल का ऊपर का खोपड़ी होती है उससे अलग हो जाता है, इसे हिलाते हैं, है ना। जब तो थोड़ा सा हरा रहेगा और चिपका रहेगा, लेकिन जब एकदम पक जाता है तो छोड़ देता है। तो उसी तरह से इस तरह से वृत्तासुर भगवान संकर्षण के ध्यानस्थ होगा कि अपने आप को शरीर से बिल्कुल अलग कर दिया था। और हम सभी जानते हैं कि आत्मा और शरीर में अंतर है ना, अंतर। तो वो बिल्कुल भगवान संकर्षण के ध्यान हो गया। इसका मौका उठा करके कि वो तो ध्यानस्थ हो गया, उन्होंने इंद्र ने क्या किया कि उसका पेट फाड़ करके बाहर आ गए, समझे, ऐसा हुआ, पेड़ उसका पेट फाड़ करके बाहर आ गए। और उसका गला इतना मजबूत था, गर्दन है ना, कि 360 दिन लगे काटने में, कितना, 360 दिन। और जो वज्र बनाया गया था वो दधीची की हड्डी का बनाया गया था, है ना। तब भगवान विष्णु भगवान कृष्ण ही पूरा प्लान बना करके बताया था इंद्र को किस तरह से मरेगा, है ना। तो इस तरह से जो है उसका 360 दिन के बाद उसका गर्दन काटा, कितना बलवान था। तो ऐसे ब्राह्मण और परम भक्त वृत्तासुर का जब वध कर दिया गया तो सारे देवता बड़े प्रसन्न थे, है ना। लेकिन इंद्र बहुत दुखी थे। तो परीक्षित महाराज जो प्रश्न पूछ रहे हैं इस श्लोक में, यही पूछ रहे हैं कि आप खुद सोचिए कि सारे जिसके मरने से सारे देवता प्रसन्न हो और जो देवताओं का राजा हो अप्रसन्न हो, तो प्रश्न उठता ही उठता है। इसीलिए परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि ये बात मेरी समझ से परे है कि वृत्तासुर को जब इंद्र ने वध कर दिया तो सारे देवता तो प्रसन्न थे, लेकिन देवताओं के ही राजा इंद्र अप्रसन्न क्यों थे। उसी को इसमें आगे किस श्लोक में बताया जाए कि क्यों अप्रसन्न थे, लेकिन आज का श्लोक यही है क्यों अप्रसन्न थे। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि देखिए बहुत सुंदर उदाहरण एक दिया है, इसको समझे, कि जिसके पास 1000 की नोट है, राइट, उसके पास 10 की भी नोट है, 20 की भी है, और 50 की भी, 100 की नोट, राइट। लेकिन जिसके पास 10 की नोट है उसके पास 1000 की नोट नहीं, अर्थात इसी चीज को प्रभुपाद जी ने क्या कहा, 1,00,000 रुपए जिसके पास है उसके पास 10,000, 20,000, 50,000, 1,000 हो सकता है, है? लेकिन जिसके पास 1,000, 10,000 है उसके पास 1,00,000 नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं कि जो वैष्णव होते हैं वो ब्राह्मण से भी क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। अगर आप वैष्णव हैं, जैसे आप जितने लोग बैठे हैं आप सब क्या हैं, वैष्णव हैं, क्योंकि गले में तुलसी की कंठी माला पहनते हैं, माथे पर वैष्णव तिलक है, अब पूरे शरीर को हम 12 तिलक से क्या करते हैं, भगवान का नाम स्थापित करके अपनों को श्रृंगारित करते हैं, अपने के वैष्णव का श्रृंगार है कि अगर है ना कि आप तिलक लगा करके वैष्णव ड्रेस नहीं करते आप वैष्णव हैं, क्योंकि आप हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप करते हैं तो वैष्णव। अगर आप वैष्णव हैं तो फिर उसमें क्या है, ब्राह्मण भी है आप, लेकिन आप ब्राह्मण नहीं है तो आप वैष्णव नहीं है। तो वो परम भक्त है, परम भक्त बिना आप वैष्णव बने परम भक्त बन ही नहीं सकते। आप परम भक्त तभी कहलाएंगे जब आप वैष्णव होंगे, आसान कि ब्राह्मण को परम भक्त ना कहा जाता है, आप जान लीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं ज्यादातर क्या होते हैं, कर्मकांडी होते हैं। हमारे चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि ज्ञान कांड कर्म कांड सकले विशेष भांड, ज्ञान कांडी और कर्मकांडी है ना, ये जो ब्राह्मण होते हैं ये दोनों विष के घड़े के समान है, बड़े खतरनाक होते हैं। जानते कैसे, पंडित लोग जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा हो कुछ ऐसे कर्मकांडी पंडित होते हैं जो पोपट लेकर के फुटपाथ पर बैठते हैं, देखा ही नहीं, वो पोपट लेकर के फुटपाथ बैठते हैं, जानते किस लिए बैठते हैं, आपको महल बनाने के लिए, आपका दुख दूर करने के लिए, ज्योतिषी बनकर के बैठे रहते हैं पोपट लेकर। अब उनकी नजर आगंतुक जो लोग फुटपाथ पे आ रहे हैं उन पर रहती है, और जैसे कोई फंसा उनके जाल में ऐसा सज बाल दिखाएंगे और 500 रुपए 1,000 रुपए उनसे क्या करेंगे, ऐंठ लेंगे, राइट। आप खुद ये नहीं बताएंगे कि आप हरे कृष्ण मंत्र क्या करो, जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, ये नहीं शिक्षा देंगे कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान तुम्हारी सभी इच्छाएं क्या करेंगे, पूरी करेंगे, कि भगवान का वचन है, क्योंकि हम लोग वैष्णव जानते हैं इस बात को। लेकिन एक कर्मकांडी पंडित ब्राह्मण बैठे रहे, खुद भूखा मरेगा फुटपाथ बैठ करके, अब पोपट को भूखा मारेगा पिंजरे बंद करके। सोचे जो व्यक्ति, आप खुद सोचे, जो व्यक्ति अपने लिए घर नहीं बना सकता, अपना दुख दूर नहीं कर सकता, अपने आप को मालामाल नहीं कर सकता, और दूसरों कैसे मालामाल की ठीका ले सकता है, यही धोखा है। तो ऐसे लोगों से हमें क्या करना चाहिए, सतर्क करना चाहिए। दूसरे होते हैं पंडे होते हैं, अगर आप जाए इलाहाबाद बनारस गंगा स्नान करने के लिए, जैसे ही आप डुबकी लगा के बाहर आएंगे पंडे लोग बैठे रहेंगे। देख कर्मकांडी लोग कैसे होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं, कैसे, सुनिए, जैसे ही आप निकलेंगे तो खूब बढ़िया तिलक तुलक लगाएगा, राइट, और उसके बाद एक मरी सी बच्चिया रखता है, कुछ खिलाता उलाता तो कुछ है नहीं, है ना, बच्चिया गाय रखता है, वो कहता है कि आप गौदान अवश्य करिए। आप उससे पूछे कि मैं गौदान क्यों करूं, वो जानते क्या बोलेगा, इसलिए कि जब आप मरने के बाद नरक जाएंगे, देख ध्यान सुने, जब मरने के बाद नरक जाएंगे तो नरक के पहुंचने से पहले एक बैतरणी नदी मिलती है, बड़ी खतरनाक नदी होती है, मल मूत्र खून प्याज जितना दुख भरा कष्ट है उसे पार करना पड़ता है। अगर आप गौदान कर देंगे तो एक गाय अपना पूंछ पकड़ा करके बड़ी सरलता से नरक पहुंचा देगी। अब देखिए कर्मकांडी बालक कितना खतरनाक होता है, वो ये नहीं बोलेगा, वैष्णव क्या बोलेगा कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें ताकि आप सीधा कहां जाएं, बैकुंठ लोग जाएं, नरक जाए नहीं। लेकिन एक कर्मकांडी पंडित कहते हैं कि आप बच्चिया को दान दे दो, हमारी जेब भर दो और नरक आसानी से पहुंच जाओ, और हम मूर्ख हैं कि हम उनकी जाल में फंस जाते हैं, यही समस्या है। इसीलिए हमारा साथ कहता है, वैष्णव सिद्धांत कहता है कि ज्ञान कांड कर्म कांड शकले विशेषभंड। अगर आप वैष्णव हैं तो अपने आप में आप ब्राह्मण हैं। जैसे आपका 1 लाख रुपए प्रभाव कहते हैं तो सारे रुपए आपके पास है, लेकिन अगर रुपए है तो 1 लाख आपके पास नहीं है। इसीलिए वैष्णव बनना सबसे महान है, सबसे उत्तम है। आप लोग कितने सौभाग्यशाली है कि प्रभुपाद की शरण में आकर के वैष्णव पद्धति से अपने आप को क्या कर लिए हो, जोड़ लिए हो। तो वही बता रहे हैं कि इंद्र इसीलिए परेशान थे कि वो भगवान का परम भक्त था। प्रभुपाद की तात्मता थे कि उसने एक परम भक्त था ब्राह्मण का वध किया था। आप जानते हैं भगवद गीता भगवान ने क्या कहा कि अर्जुन यदि कोई मेरा नाम लेता है, वो चंडाल ही क्यों न हो, कुत्ता खाने वाला ही क्यों न हो, यदि मेरा नाम लेता है तो उसको सम्मान करना चाहिए। वृत्तासुर तो परम भक्त था, वो तो युद्ध में भी ज्ञान की बात ही कर रहा था, भगवान की चर्चा कर रहा था, अब भगवान के धाम स्वतः जाने का प्रयास कर रहा था, तल्लीन था। इसलिए इंद्र जो है तकलीफ में थे, उनको दुख था कि देखो हमने मारा जरूर लेकिन एक परम भक्त और ब्राह्मण का क्या किया, वध किया। अब उसके पहले इन्हीं इंद्र ने उसके जो भाई था ब्रह्म, क्या नाम उसका, विश्वंभर, उसका भी वध किया था, तब भी उनको ब्रह्म हत्या का वध लगा था, क्योंकि जो विश्वंभर थे उनका 3 सिर थे। कितने सिर थे? 3 सिर थे। एक से वो सोमरस पीता था, विश्वरूप राइट, एक से वो सोमरस पीता था, एक से जो मदिरा पीता था और दूसरे से भोजन खाता था। 3 मुंह अलग अलग खाने के लिए, एक सोमरस पीने के लिए, एक मदिरा पीने के लिए और एक खाना खाने के लिए। और इंद्र ने तीनों को जो है उसकी गर्दन को काट दिया। तो जिसे सोमरस पीता था उस मुंह से जानते कौन पक्षी बना, पपीहा बना। जो पपीहा है ये विश्वरूप के सोमरस वाले शरीर से इसका उत्पत्ति है, उसको पपीहा बन गए। पपीहा का नाम सुना, पपीहा वो प्यू प्यू बोलता है बहुत प्रसिद्ध नाम है पपीहा। जो जिससे वो मदिरा पीता था उससे एक पक्षी है जिसको गौरैया बोलते हैं। गौरैया देखा है, यहाँ बहुत होती गौरैया स्पैरो, उस बनी, उसकी उत्पत्ति ऐसे हुई। और जिसे भोजन जन खाता था तो एक पक्षी होता है जिसका नाम तीतर है। तीतर बहुत कम दिखाई देता है लेकिन है बहुत प्रसिद्ध, क्योंकि तीतर बटेर को पकड़ना बड़ा कठिन होता है लेकिन शिकारी भी पकड़ लेते हैं ना, तो ऐसे होती है। तो इसीलिए इंद्र को तकलीफ थी कि एक हम भाई को मारा राइट, उसको भी ब्रह्म हत्या लगी, तो वो तो किसी तरह से पृथ्वी जल इन लोगों ने शेयर करके हमारा दुख दूर कर दिया, लेकिन दोबारा फिर फंस गए कि वृत्तासुर का क्या किया, वध किया। तो इस तरह से जो है वो दुखी थे। अब दुख का पूरा कारण क्या है ये धीरे धीरे अगले श्लोक में आपको सुनाया जाएगा। आज के श्लोक में से प्रश्न पूछा है क्यों दुखी थे, इसलिए अब हम नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में चर्चा करें। देखिए हम जिस संस्था से जुड़े हैं, हमारी जो वैष्णव परंपरा है उसमें नरोत्तम दास ठाकुर का विशेष महत्व होता है, क्योंकि हम भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। तो भगवान की सेवा हम कैसे कर पाएंगे उसका नरोत्तम दास ठाकुर का एक लिखा हुआ बहुत ही सुंदर भजन है। जितने वैष्णव भक्त यहां पे हैं ये भजन आपको कंठस्थ कर लेना चाहिए। जब हम लोग यहां जुहू में थे, पीले कपड़े में थे, तो हम लोगों को इंचार्ज थे देवकिरण प्रभु, तो हम लोग और राधा कृष्ण प्रभु गए थे। तो इन लोगों ने इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग दी थी कि ईश्वर परिषद उपदेशामृत जितनी छोटी छोटी किताबें थी सब कंठस्थ, श्लोक सारे कंठस्थ है ना, क्योंकि उपदेशामृत जो है रूप गोस्वामी का लिखा हुआ श्लोक, हर श्लोक जो है महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए ईश्वर परिषद उपदेशामृत सब ज्यादा उपदेशामृत, भक्त स्वामी सिंधु अनुरतम दास ठाकुर के कुछ भजन, जिसमें एक भजन कुछ प्यार हम आपको सुनाएंगे। उसमें नरोत्तमदास ठाकुर अपने प्रेयर में कहते हैं, ध्यान सुनिएगा कि की रूपे पाइब सेवा मुई दुराचार। दुराचार करते समझ गए ना, दुराचारी व्यक्ति को दुराचार करते। अब देखिए नरोत्तम दास ठाकुर जैसे महान भक्त, जानते हैं नरोत्तम दास ठाकुर वो जब जन्म लिए थे मां के गर्भ से तो वो काले रंग के थे, श्याम रंग के थे, लेकिन जैसे ही पद्मावती नदी में डुबकी लगाई उनका रंग गोरा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गौरांग महाप्रभु का प्रेम उनको प्राप्त था। क्योंकि चेतन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने क्या किया था कि अपना प्रेम जो है पद्मावती नदी को सौंप के गए थे। अतः जब नरोत्तम यहां पे आएंगे स्नान करने के लिए आएंगे तो ये जो मेरा गौरांग प्रेम है इनको उन्हें आप क्या करना, कृपा करके दे देना। और जब नरोत्तम दास वहां पे गए तो पद्मावती नदी ने एक प्रश्न पूछा चेतन महाप्रभु से कि मैं तो पहचानती नहीं उनको, है ना, एक कितना वाजिब प्रश्न था कि मैं उनको पहचानती नहीं तो मैं कैसे समझूं कि ये वही है। तो कहे कि जिनके आने से और प्रवेश करने से तुम्हारे हृदय में हलचल पैदा हो जाएगी, तुम तरंगित हो जाओगी, है ना, समझ ना कि यही कौन है, नरोत्तम दास ठाकुर कैसे महान संत। तो जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर उस पद्मावती नदी में अपना पांव रखा, मन प्रवेश किया नदी में, वैसे ही पूरी नदी क्या हो गए, तरंगित हो गए, लहरें उफान पे आने गए। तो पद्मावती नदी ने समझ लिया कि यही महान भक्त चैतन्य महाप्रभु कौन है, नरोत्तम दास ठाकुर है। जब अंदर तक प्रवेश कर गए और डुबकी लगाई तो पद्मावती नदी ने उनको जो गौरांग प्रेम संजो कर रखा हुआ था उनको दिया। जैसे वो बाहर निकले तो पूरा रंग उनका क्या हो गया, गोरा हो गया। ये है चेतन महाप्रभु की कृपा। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर इतने महान भक्त जिनको स्वयं चेतन महाप्रभु ने अपना प्रेम दिया, पद्मावती के थ्रू उनको प्रेम ला, ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर अपने आप को क्या बोल रहे हैं, दुराचारी बोल रहे हैं। तो हम लोग किस खेत की मूली हैं? ये समझिए इस प्यार से कि जब नरोत्तम दास ठाकुर जैसे महान भक्त जिनको चैतन्य महाप्रभु का प्रेम प्राप्त हुआ, अगर वो अपने आप को इतना नीचा समझते हैं, यही हमारे वैष्णव पद्धति है। चैतन्य महाप्रभु बता त्रिनादपि सुनिश्चिन, हमें अपने आप को क्या समझना चाहिए, अगर आप वैष्णव बनना चाहते हैं तो पहला सिद्धांत यह है कि अपने आप को तीन के से भी नीचा समझना चाहिए। क्या हम समझ रहे हैं? आप इसकी कसौटी में, चैतन्य महाप्रभु की श्लोक की कसौटी में आप अपने आप को कस सकते हैं कि हम कहां खड़े हैं, हमारी क्या स्थिति है। तो नरोत्तम दास ठाकुर के प्यार कंठ सके कि नरोत्तम दास ठाकुर कितना महत्वपूर्ण है कि रूपे पाइब शिवा, कि हे चैतन्य महाप्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं किस रूप से आपकी सेवा प्राप्त कर सकता हूं, अर्थात मुझ जैसा दुराचारी व्यक्ति आपकी सेवा किस रूप से प्राप्त कर सकता है, अर्थात मैं उसका अधिकारी नहीं हूं। अधिकारी क्यों नहीं हूं, दूसरी लाइन बता रहे हैं कि श्री गुरु वैष्णवेर रति ना लागिल अमार, कि अभी तक हमारे हृदय में जो हमारे श्री गुरुदेव जी हैं उनके प्रति, जितने वैष्णव हैं उनके प्रति हमारे हृदय में और राग ही उत्पन्न नहीं हुआ, उनके हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, तो मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं। नरोत्तम दास ठाकुर एमएस छल है, यह का मतलब क्या होता है कि गुरु के प्रति जितने वैष्णव हैं सबके प्रति हमारे हृदय में क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद बोला करते लव ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, प्रेम और विश्वास जहां पे होता है सहयोग की भावना वहीं पनपती है, अर्थात सहयोग तभी मिलेगा जब आपस में प्रेम और विश्वास होगा। तो वही नरोत्तम दास ठाकुर की मुद्राचारी व्यक्ति आपकी सेवा कैसे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अभी तक हमारे हृदय में जो वैष्णव जन हैं उनके प्रति और जो गुरु हैं उनके प्रति प्रेम ही नहीं उत्पन्न हो पाया, हम सेवा में कैसे लग सकते हैं? यही हमारी सोच, क्योंकि जो जितना महान होता है वो उतने जमीन से लगा होता है। हम कितना भी रहें लेकिन हमें अपने जमीन को नहीं छोड़ना चाहिए, हमने अपनी वैष्णवता को, विनम्रता को और निम्नता को नहीं सोचना चाहिए, मैं नहीं छोड़ना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए आप जितना विनम्र होकर के रहेंगे उतने भक्ति में आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यह है नरोत्तमदास ठाकुर, आज उनका त्रिवा तिथि। उसे कहते हैं कि अशेष माया तिमन मगन भइल, हमारा मन जो है ये जो पूरा ब्रह्मांड है जो माया है इसमें क्या है, फंसा हुआ है ना। एक होता ना माया बाजार, कि हम सब क्या है माया के जाल में फंसे हुए हैं। हमारा जो मन है किसमें लगना चाहिए, स्वयं भगवान कहते हैं मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कारु, अपना मन मेरे में लगाओ। लेकिन हमारा मन किसे भ्रमित रहता है, माया, हम माया के बाजार में फंसे हुए हैं, यही स्थिति है। लेकिन इस माया से अपने आप को बचा जा सकता है, इस माया से कैसे, भगवान खुद कहते हैं कि मन मना भो मद भक्तो, अपना मन मेरे में लगाओ, मेरी भक्ति करो और मुझे क्या करो, प्रणाम करो। ऐसा भगवान क्यों कहा, भगवान जानते थे कि कलयुग जैसे जैसे आएगा लोगों का मन मेरे में नहीं लगाएगा, उसका मन मेरे में नहीं, उसका मन कहां लगेगा, माया में। तो वही नरोत्तम दास ठाकुर इतना सुंदर बात बता रहे हैं कि ये मन, क्योंकि मन अगर लग गया तो तन अपने आप लगता है, भगवान से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं होता। भगवान जानते हैं, आप सब जानते हैं, तन से मन से धन से भगवान की सेवा की जाती है। लोग कहते भी जो ज्ञान जो शास्त्रों की ज्ञाता नहीं है आम आदमी से बात करते, रिक्शा चलाने में जानता है, तन मन धन से भगवान की सेवा करो। लोग कभी कभी कहते भी एक आरती में कि तन 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 मंत्र को अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसे गाते हैं भजन कहने को कि हाँ तन कि तन मन धन, ये सब जानते हैं। लेकिन तन से धन से ज्यादा कीमती होता क्या, मन। अब ये अपने जीवन देखिए कि मन पहले लगता है, जैसे अगर आपको खीर खाने की इच्छा हुई तो पहले मन से आप सोचेंगे फिर एक्टिवेट होंगे, मन करेगा वहां चलना है तो आप प्लान बना लेंगे, अर्थात मन का मिलना बहुत जरूरी है। जब तक आपका मन भगवान से नहीं मिलेगा आप धन और तन नहीं लगाएंगे। इसीलिए भगवान जानते हैं इस बात को कि इसका मन, अपना मन मेरे में लगाओ, कि जैसे जैसे मन भगवान में लगना शुरू हो जाएगा आपका तन भी लगना शुरू हो जाए, क्योंकि जो शरीर है वो मन के साथ चलती है ना। मन कहता है कि जुहू बीच चलो तो हम चल देते हैं, है ना। मन कहता है गोलगप्पे खाओ तो हम गोलगप्पे की दुकान में चल देते हैं, मन कहता है नारियल पानी पियो तो हम चल देते हैं, अर्थात मन के साथ शरीर इंद्रियां खींची हुई चली जाती है ना। इसलिए ऐसा है, तो यही मन भगवान में लगेगा तो तन जो है लग, क्योंकि मन करेगा भाई तो साढ़े तीन बज गए उठ करके कहां चलना चाहिए मंदिर, आप तोड़ के नहाए धोगे चले आएंगे, अगर मन कहने लगे नहीं नहीं सो जाओ और सो भी जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है आप घड़ी देखते हैं नींद आपकी ढाई बजे खुल गई, अभी बहुत टाइम नहीं सो गए तो सो ही गए, ऐसा हो जाता है। ये मन की ऐसी अवस्था है, तो मन कितना स्ट्रांग है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, है ना, वो इस पर निर्भर करता है, क्योंकि मन के अनुसार हमारा शरीर क्या चाहिए उसके अनुसार चलती है। तो वही भगवान बड़े चतुराई कहते हैं कि अपना मन मेरे में लगा दो तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये बहुत टेक्निकली है, इस प्रभुपाद जी बोलते थे जो लाइफ मेंबरशिप प्रभुपाद जी ने स्कीम शुरू की उसका पीछे यही था। प्रभुपाद जानते थे कि वर मनी गोस देयर माइंड गोस, जब बिजनेसमैन होता है जिसका पैसे वाला आदमी होता है वो जहां धन लगाता है उसका दिमाग अमन वहीं जाता है, कि उसका आसक्ति किससे होती है, धन से होती है। तो अगर उसका धन ले लोगे तब उसका माइंड क्लिक करेगा, बोलेगा हरे कृष्णा वाले आए थे 25,555 लेके गए हैं, चलकर देखें क्या करते हैं, तब दौड़ेगा। तो प्रभुपाद जी कितना टेक्निकली है ना, कि जिस चीज में जिसकी आसक्ति हो उसी को कब्जे में कर लो। इसलिए जो डाकू लोग क्या करते हैं, जैसे घर में घुसेंगे तो पहले बेटे को गन लेंगे, जानते हैं कि सारे पूरे परिवार का निष्कर निचोड़ कौन है, बेटा है, उसको पकड़ लो, पहले आप थैली निकालेगा, सब निकालेगा, तो गन पड़ने से। तो ये यही टेक्निक है। तो इसीलिए भगवान बड़े दिमाग से बात करते हैं कि मन, क्योंकि मन क्या है, चंचल होता है। तो मन त्रायते इति मंत्र, मन को जो बस में करता है उसे मंत्र कहते हैं। और हम किस मंत्र का जप करते हैं, महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ही नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि अशेष माया तिमन मगन हैल, हैल मने है, कि हमारा मन कितना मगन है माया में फंस करके, राइट। तो उसे क्या कहे, वैष्णव त्रिलेश मात्र रति ना जल, क्योंकि मन माया में फंसा हुआ है, इससे जो वैष्णव गण है उनके प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न ही नहीं हो पाता है। और उसके बाद कहते हैं कि विषय भूलिया अन्य हनुद्यानिशी गले फांसे दीते फिरे माया से पैसा, कि जो इंद्रिय सुख है, ये जो विषय वासना है, इसमें हम इस तरह से लीन हो गए हैं। और दिवा निशी, दिवा मने ये बंगला भाषा है, दिवा मने दिन, निशी मने रात, कि दिन रात हम जो विषय हैं उस विषय में इतने लिप्त हो गए हैं कि पूरी तरह से हम इन्हीं विषयों में क्या है, लिप्त है। जैसे अभी जो विचार सुबह सुबह वॉकिंग करने जाइए है ना, तो बड़े बड़े सेठ जितने बड़े से उतने मोटे मोटे कुत्ता लेकर टहलते हैं। अब उनकी आसक्ति किससे है, ये सब कुत्तों से है, बिल्ली से है, है ना। आप समझे, अभी 2009 की जो मिस इंडिया बनी थी एकता चौधरी है ना, उसको हमने मायापुर ले किया था उसको, है ना। जानते क्या हुआ, जब उससे हम मिले एक कार्यक्रम में, फिर उसको हम मंदिर ले आया, उसको गीता दिया, फिर वो अपने घर मुझे बुलाई, फिर मेंबर बन गई, फिर उसको हम मायापुर ले गए है ना। फिर राधानाथ स्वामी महाराज जी के कार्यक्रम में उसको चीफ गेस्ट बनाया था, उनका जो बुक लॉन्च हुआ था। तो जानते हैं जब उसके घर हम गए तो उसकी माँ बोलती है कि देखो मेरी बेटी पता नहीं इसको क्या हो गया है, थाईलैंड से बिल्ली लेके आई है। मैं बड़ा ताजू क्या, हमका क्या यहाँ बिल्लियां नहीं है बेचारी, यहाँ कितनी बिल्लियां है भाई, ने उसको अगर बिल्ली ही लाना था तो थाईलैंड से लाने की क्या जाना था। ये झूठा स्टेटस, झूठा दिखाव, लोग मर रहे हैं। अभी आप दान के लिए जाओ तो एक पैसा निकालने उसकी नानी मरेगी है ना, दान देने नानी मरेगी है ना। लेकिन इतना हो गए, हमारे एक मेंबर है उनकी वाइफ जानते हैं कि मेरा जो कुत्ता है वो एयर कंडीशनर हॉस्पिटल ही पसंद करता है, हद हो गई है, किसी चीज की हद हो गई है। माने अब ऐसे लोग माने यही लोग जाकर कुत्ते बिल्ली बनते हैं है ना, क्योंकि आपकी जितनी आवश्यकता जिससे होगी आप वही बनेंगे। ये शास्त्र कहता है, अगर आप जिसो ये भरत महाराज इतने महान भक्त जड़ भरत, उनकी आवश्यकता एक हिरण के बच्चे से हो गई, उनको किसी में बनना पड़ा है ना। अब हमारी आसक्ति जब कुत्ते बिल्ली में है पालने में, तो हम कुत्ते बिल्ली बनेंगे, यही हमारी आसक्ति है। तो इन सब चीजों से हमें क्या करना है, अपने आप को बचाना पड़े। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि दिन रात हम इस तरह से भगवान को भूल करके सोचने वाले, और हम इस माया जाल में जकड़ करके इंद्रिय सुख में इन सब हम में व्यस्त है, और हमारा क्या है, हमको ये याद ही नहीं रहता कि गले फांसे दीते फिरे माया से प्रशासन। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि देखिए हमें एक ज्ञात ही नहीं रहता कि जो ये माया रूपी पिशाचिनी है, ये माया क्या है, पिशाचिनी का नाम दिया। भगवान भी गीता में कहते मम माया दुरत्या, जो मेरी माया है बड़ी दुष्ट है। यहां तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते पिशाचिनी है, वास्तव में दुष्ट है, लेकिन इस माया से बचा जा सकता है। कैसे बचा सकता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद ने बताया कि इस भगवान कहते हैं कि निश्चित रूप से ये हमारी माया मेरी ही माया है, बड़ी दुष्ट है, पिशाचनी है, लेकिन फिर भी इससे बचा जा सकता है। और उसका उपाय क्या है? मेरा नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, और कोई चारा है ही नहीं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि चेतन महाप्रभु कितने कृपालु हैं कि हमको इतना आसान रास्ता दिखा दिया कि चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। लोग हैप्पी होने के लिए हिप्पी बन जाते हैं, अमेरिकन लोग हिप्पी बन गए थे हैप्पी होने के लिए, लेकिन हिप्पी रहे। लेकिन जब प्रभुपाद जी गए टॉम्पिन के पार न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने क्या किया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे नाम देकर को उनको हैप्पी बना दिया। तो प्रसन्न रहने का इस संसार में इससे सुंदर और सरल कोई औषधि है ही नहीं। सबसे सुंदर सटीक असर करने वाली औषधि क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र। तो ये जो पिशाचनी है कि गले फांसी, तुम्हारे गले में फांसी का फंदा देने के लिए ये जो पिशाचनी माया है वो हमारे पीछे पीछे ही लगी रहती है। अर्थात कहते ना, सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी। अगर आप एक पल भी कृष्ण को भुलाते हैं तो वही मौका होता है माया को आपको पकड़ने के लिए कि वो आपके साथ ही रहती है। यही तो नर्तनदाता को बताते हैं कि हमें समझिए कि माया जो पिशाचनी है कितनी दुष्ट है कि हमारे गले में फांसी का फंदा मारने के लिए हमारे पीछे पीछे लगी रहती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? सतर्क रहना चाहिए। खाते सुते यथा तथा नाम लग, इसलिए खाते वक्त सोते वक्त उठते बैठते जाते जहां भी रहे हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। क्योंकि यदि आप भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान आपकी चिंता करेंगे। आज पूरा संसार परेशान है, चिंताग्रस्त है, इसीलिए वो भगवान का चिंतन नहीं कर रहा है, वो भगवान का नाम नहीं ले रहा है। जितने संसार के लोग भगवान का नाम नहीं ले रहे, भगवान से दूर होते जा रहे हैं, उतने वो रोगग्रस्त होते जा रहे हैं और उतने वो तनाव में रह रहे हैं। यदि कोई तनाव मुक्त होना चाहता है तो अपने आप को से किससे जोड़ना पड़ेगा? हरे कृष्ण महामंत्र से, तभी उसका उद्धार हो सकता है, नहीं तो उसका उद्धार बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद जी ने ये जो सोसाइटी बनाई इसी के लिए कि हमें अपना भी कल्याण करना है और दूसरों को प्रचार करके, हर नाम दे करके, भक्ति दे करके उसका भी क्या करना है? कल्याण करना है। इसीलिए प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे कि हमारे जो मंदिर हो वो जंगल में बने। अरे हमें जानवर थोड़ी सुधारना है, तो दो पग के पशु यहां जानवर जैसे घूम रहे हैं, हमको उनको सुधारना है ना? क्योंकि धर्म बिना नर पशु भी समान। अगर आदमी धर्म के अनुसार जीवन नहीं जी रहा है तो दो पैरों पर चलने वाला क्या है? जानवर है। इसलिए प्रभुपाद जी ने जितने मंदिर बनाए और अभी भी इष्कान जितना मंदिर बना रहा है, बिल्कुल शहर के बीच में, सब माया के बीच में मंदिर बना रहा है। इसीलिए क्योंकि हमें किसको प्रचार करना है कि ये शास्त्र है, ये हरिनाम है, किसके लिए है? मनुष्यों के लोग, जो द्विपक पशु घूम रहे हैं उनके लिए है। उनको पकड़ पकड़ के उनको भक्त बनाना है। प्रभुपाद जानते थे, प्रभुपाद कहते हैं कि आजकल बड़े लोगों को भक्त बनाना उतना ही कठिन है जैसे सुअर को इंजेक्शन लगाना कठिन होता है। प्रभुपाद जी बड़ा कड़ा शब्द बोलते थे, क्योंकि सुअर को इंजेक्शन लगाने के लिए चार पांच मोटे आदमी चाहिए तगड़े, उसको पकड़ने के लिए, तब डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा। इंजेक्शन में तगड़ा होना चाहिए कि उसकी चर्बी मोटी होती है कहने को। तो उसी प्रकार से हमारे भक्त जो है कितना एक एक बड़े बड़े लोगों को कितना दिन से पीछे लगकर चिपके रहते हैं, तब जाकर कहता है, क्योंकि इतना सीधा सुंदर उन्होंने बहाना बना लिया है। जैसे हमारे भक्त जो प्रचारक हैं बोलते हैं कि आज बहुत सुंदर सजाया गया है भगवान का मंदिर, इसमें यशोदा दामोदर की लीला चल रही है, आप आरती गए ना? तो कहे स्वामी जी मैं आना तो चाहता हूं लेकिन मैं क्या, देखो ये बहाना है, आना ही नहीं चाहता है ना, आना ही नहीं चाहता, लेकिन क्या बोलता, झूठ बोलता है, क्योंकि मैं आना चाहता हूं लेकिन क्या करूं, आप जानते हैं कि मेरे मरने तक ले फुर सकते हैं, ऐसा बोलता है। दूसरी बात क्या बोलेगा, स्वामी जी आप जानते हैं बिना भगवान के पत्ता नहीं हिलता, अर्थात बिना भगवान के पत्ता नहीं हिलता, तो मैं इतना मोटा ताजा सेट कैसे हिल सकता हूं आसानी से। फिर क्या बोलेगा, जब भगवान बुलाएंगे तो हम आएंगे, तुम इतने बड़े आदमी हो कि भगवान तुम्हें बुलाएंगे, ऐसा गलत सोच, ऐसा अगर कोई व्यक्ति सोचता है तो उससे ज्यादा घटिया इंसान हो ही नहीं सकता इस संसार में, जो ये कहे कि जब भगवान बुलाएंगे तब तो हम आएंगे। ए भैया तुम्हें जब दिल्ली जाना होता तो एयरपोर्ट तुम जाते हो कि एयरपोर्ट तुम्हारे पास आता है, तकलीफ में तो है नहीं, भगवान क्यों तुम्हें बुलाएंगे, तुम्हें डर कहना चाहिए, इतना अहंकार तुम्हारे अंदर है, कितनी गलत बात है, बहुत घटिया सोच है। यहां जितने बैठे लोग हैं अगर ऐसा सोचते हैं तो घटिया सोच है, गलत सोच है, बहुत गलत सोच है। प्रभुपाद बोलते थे कि अगर कहीं आपको जाना है तो केन के पास आप ही को जाना पड़े, ये नहीं पूरी राजधानी आपके सामने दरवाजे खड़ी हो जाएगी, ऐसा ऐसा नहीं है। दुखी आप हो, दुखाले में आप आए हो, मर आप रहे हो, बूढ़े आप हो रहे हो, है नहीं, भगवान बुलाएंगे तब तुम आओगे, ऐसा नहीं है। ऐसी सोच बहुत गलत सोच है, हमें तो स्वतः आना चाहिए। जो प्यासा होता है वो कुएं के पास जाता है, ऐसी स्थिति है। सच्चाई ये है, भगवान से कुछ छिपा नहीं, दाई से क्या पेट छिपाई, कहावत है दाई से क्या पेट छिपाई। भगवान तो अर्जुन से कहते, अर्जुन तुम्हारे में हमारे में इससे बड़ा अंतर यही है कि मैं सबके दिल की बात जानता हूं लेकिन तुम सिर्फ अपने दिल की बात जानते हो। भगवान सब जानते हैं कि हर इंसान कितने पानी में है ना, भगवान सब जानते हैं है ना। तो भगवान से आप छुप करके नहीं रख सकते, कि भगवान से छुपा रिश्तम कोई है ही नहीं है। इसे प्रभुपाद कहते हैं अगर आप रास्कल समझते भगवान को तो सबसे बड़े रास्कल हैं, अगर भगवान बदमाश है तो सबसे बड़े बदमाश है, भगवान प्रेमी है तो सबसे बड़े प्रेमी है, भगवान पति है तो सबसे बड़े पति है, भगवान योगेश्वर है तो सारे योगी में बड़े योगेश्वर है, राजनीतिज्ञ है कुछ ऑल परफेक्ट। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा इज परफेक्ट, यू टेक नॉलेज फ्रॉम हिम एंड बी परफेक्ट, माने कृष्ण की शरण में तो बेटा आना ही पड़ेगा। जब रावण आ गया, कंस आ गया, तो कंस से रावण से ज्यादा खतरनाक तो तुम नहीं हो, है नहीं? आप खुद सोचो कोई कितना बड़ा दादा हो, कंस से हिरणा कंस से ज्यादा हो ही नहीं सकता, राइट? इसलिए प्रभुपाद कहते संडर करो और क्या करो, जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो नरोत्तम दास ठाकुर यही शिक्षा देते हैं कि हमें विनम्र भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जितने वैष्णव हैं हमें सबके प्रति प्रेम और अनुराग रखना चाहिए, गुरु के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। अगर गुरु के प्रति वैष्णव के प्रति हमारे हृदय में प्रेम रहेगा तभी हम भगवान की सेवा करने के योग्य अपने आप को बनाएंगे। हमारे अंदर विनम्रता होना बहुत जरूरी है, वास्तव में सबसे बड़ा आभूषण है सरल होना और विनम्र होना, ये बहुत ही आवश्यक है। पर कोई बोला करता है कि जो व्यक्ति मीठा बोल नहीं सकता वो कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मीठा बोलने में कुछ लगता ही नहीं, जिसमें कुछ नहीं लगता तुम वही बोल मीठे बोल नहीं दे पा रहे हो तो बाकी तुम क्या दोगे। आज घर घर में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है चार जगह, जानते क्या हो रहा है, यही हो रहा है कि छोटी छोटी बात दे दनादन गालियां मारपीट शुरू हो जाती है ना, यही बहुत खतरनाक है। वास्तव में पूरा संसार जल रहा है, काम क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं, और इन्हीं तीनों के जकड़ में आज का संसार के लोग क्या हो गए हैं, फंस गए हैं उसमें, काम क्रोध और लोभ, जिसे क्रोध सबसे खतरनाक चीज है। इसीलिए उपदेशामृता पढ़िए, जिसे प्रभुपाद जी ने कई पेज में इसके बारे में बताया जिसमें बताया कि वाचो वेगम अनुषा क्रोध में जीवा वेगम उदरपद, उसने बताया कि क्रोध के वेग को कैसे नियंत्रित किया जाता है। यू कॉन्ट कंट्रोल द एंगर, एंगर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता लेकिन कन्वर्ट किया जा सकता है, ए प्रभाव डाइवर्ट किया जा सकता है। जैसे बिजली, बिजली को अगर डाइवर्ट कर दिया तो कूलिंग करने लगती है और उसको डाल के हीटिंग करने लगती है, बिजली वही होती है लेकिन कहीं हीटिंग का काम करती है कहीं कूलिंग। हमें इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि हम क्रोध को किस तरह से यूटिलाइज करें। तो यूटिलाइजेशन करना ये जो है हमें ये आना चाहिए कि कब कहां कितना क्रोध करना चाहिए। आज चूंकि इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है इसलिए हम इस रिदम को, लड़ाई को समझ नहीं पाते। अगर आंख दिखाने से काम चल जाता है तो आंख ही दिखाई है ना, अगर डांटने से काम चल जाता डांट ही दीजिए, अगर कान ऐठने से काम जाता है कान ही ऐठ दीजिए। एक थोड़ी की छोटी सी गलती चढ़ जाए तो मार डालिए, जो आजकल हो रहा है थोड़ा सा गाड़ी टच हुई नहीं कि देन दना दन मार हमारी शुरू हो जाती रोड पे ही, आदमी परेशान है इसे कोई लेना देना, गाड़ी टच दे। अगर तुम 10 लाख की गाड़ी लेकर चलते हो तो 20 लाख का छाती भी लेकर चलो, दिल भी होना चाहिए है ना कि भाई जब भीड़ में चल रहे थोड़ा टच हो ही सकता है राइट। छोटी छोटी बात तकरार हो जाती, 20 रुपए खाते मर्डर हो जाता है, सोचने वाली बात, 20 रुपए खाते सोचने वाली बात। इतना हमारा एंगर, तो एंगर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये कला को सीखनी चाहिए। जैसे भगवान राम से, समय खत्म हो गया, भगवान राम में इससे समाप्त, भगवान राम सीखना चाहिए। 3 दिन बीत गए और समुद्र के किनारे खड़े होकर भगवान विनती कर रहे हैं कि हे समुद्र रास्ता है, जो 1 सेकंड में भगवान चाहे उस पार चल जाते है ना, सुखा देते हैं है ना। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने क्या कहा, 3 दिन तक प्रार्थना करें कि रास्ता दे रास्ता दे, वो निकल ही नहीं रहा। लेकिन इसके पीछे रहस्य बहुत बड़ा था। समुद्र चाहता था कि भगवान क्रोध करें क्योंकि वो अपना उल्लू सीधा करना चाहता था, वो अपना उल्लू सीधा करना चाहता इसलिए वो चाहता था कि भगवान क्रोध करें, इसलिए वो निकल नहीं रहा था। लेकिन भगवान भी मास्टर स्ट्रोक मारा, उन्होंने लक्ष्मण से कहा अब 3 दिन बीत गए बेटा निकल नहीं रहा है, इसलिए धनुष बाण, क्योंकि पहले दिन ही लक्ष्मण जी चाहते थे कि अनिवार निकालो सुकर निकल जाओ। लेकिन अब जो है लक्ष्मण जी बड़े खुश हो गए, को मारा मारी बड़े पसंद करते थे, लक्ष्मण जी तुरंत धनुष बाण लेके आए और पकड़ा दिया, क्या भैया मैं तो पहले ही कहता था, पहले दिन मैंने बोला ही बोला था है ना, चलो देर आए दुरुस्त आए, मेरी ही बात मानी जा रही है ना। तो उन्होंने देखिए अब यहां पे कैसे क्रोध को कंट्रोल किया जाता है, ये भगवान से क्या, भगवान राम ने जानते क्या किया, तरु चढ़ाया खींचा लेकिन छोड़ा नहीं। तो यही कला है, क्रोध का आभास से ही उनका काम हो गया। जैसे तीर चढ़ाया अब तरेरा आंख तरेरा समुद्र खड़ा हो गया। सोचना तेरा पूरा क्रोध नहीं किया, इन्हें एक मार डाल देखा सब कुछ नहीं, भगवान ने क्या बड़े तरीके से क्रोध का आभास दिया, इतने काम हो गया। जैसे उनका भगवान वहीं रुक गए, क्रोध को कैसे रोका जाए, क्रोध हो उसको पी जाओ आपने कैसे कंट्रोल करने, यही कला है। तो भगवान ने उसर्ज किया, समुद्र निकला हाथ जोड़ा कहे कि उसने सब रास्ता बता दिया शिव उससे कर। लेकिन भगवान ने कहा समुद्र मेरी एक आदत है कि जब एक बार मैं धनुष पर बाण चढ़ा लेता हूं मैं मारता जरूर हूं, अब बताओ तुम कहां फेंको इसको, तुम्हारे ऊपर मारू या क्या करूं इसका। यही बात जो है समुद्र इसीलिए प्रकट नहीं होता, वो चाहता था कि हम तभी निकलेंगे जब भगवान धनुष बाण चढ़ाए लेकिन छोड़ने से पहले मैं प्रकट हो जाऊंगा, कि वो अपना काम कराना चाहता था। उसने कहा हे प्रभु आप इसका मुंह उधर कर दीजिए उत्तर दिशा की ओर, यानी कि भगवान तो उसकी ओर किए थे कहे उत्तर दिशा की ओर ये बाण छोड़ दे कि जो हमारे दुश्मन हैं हमको बहुत परेशान करते हैं उनका क्या करे विनाश कर दीजिए। तब भगवान ने क्या किया उसका उत्तर दिशा की ओर करके छोड़ दिया। वास्तव में इसीलिए समुद्र प्रकरण वो चाहता था कि भगवान थोड़ा सा क्रोध में आवेश में आए धनुष बाण चढ़ाए, और ये भी जानता था कि एक बार चढ़ा लेंगे तो छोड़ेंगे जरूर, हम अपना काम उल्लू सीधा कर लेंगे। ठीक है, क्या दिमाग, उसमें सारा दिमाग से काम चल रहा था। तो इधर भगवान का भी काम हो गया, समुद्र काम, दोनों खुश। यह क्रोध इस एक हल्के से क्रोध से दोनों का काम पूरा, भगवान का भी काम पूरा हो गया, उसका भी काम समझ। इस यही पे प्रभुपाद कहते हैं कि हनुमान जी से हमें सीखना चाहिए क्रोध को कैसे यूटिलाइज किया जाना चाहिए। उपदेशा में सब प्रभुपाद ने समझाया। कहने का मतलब कि ये सब जो ग्रंथ हमको पढ़ना चाहिए, तो आज नरोत्तम दास ठाकुर जैसे महान भक्त, उनके चरण चिन्हों पर हमें चलना चाहिए और उनके जितने भी लिखे भजन से वैष्णव भजन आप लोगों को पढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण। टाइम ज्यादा, कोई प्रश्न है? एक दो प्रश्न हो सकते, ऐसा न कोई प्रश्न। जय ग्रंथराज महावतन की, नवतम डाव ठाकुर तिरुभाव तिथि की, जय गौर प्रणाम।